उसको सानवी की बातों से झुंझुनाहट हो रही थी। मुझे नहीं लगता कि हमें इस नॉलेज की ज़रूरत है, टमाटर तो हम वैसे भी खा ही रहे हैं, अगर हमें इसके फ़ायदे और ना भी पता भी हों तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आर्यन ने कहा। वो तो रात के बारे में बात करना चाहता था, सानवी की फीलिंग जानना चाहता था, उसे टमाटर की जनरल नॉलेज से कोई मतलब नहीं था। हमारे पास जानकारी होनी चाहिए, सानवी ने कहा। तुम सेहत की बात कर रही हो, पर तुम्हारी खुद की याददाश्त तो ठीक नहीं रहती। कल रात हमारे बीच क्या हुआ था, क्या तुम्हें याद है? अब आर्यन को अपनी बात पर आना ही पड़ा, क्योंकि सानवी बात ही नहीं करने दे रही थी। क्या हुआ था? फिर वो अचानक बोली, इसके ढक्कन तो रसोई में रह गए थे, मैं इनके ढक्कन लेकर आती हूँ, कहकर वो किचन की तरफ वापस चली गई। सानवी की बातें सुनकर आर्यन को झुंझुलाहट हो रही थी। वो कुछ कहना चाहता था, पर सानवी उसे मौका ही नहीं दे रही थी। वो टमाटरों पर बोलती जा रही थी और आर्यन बस उसे देखता रहा, जिस बात पर आना चाहता था वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। सानवी की बातों से झुंझुलाया हुआ आर्यन आखिर बोल ही पड़ा, तुम्हें B12 लेना शुरू करना चाहिए सानवी, इससे याददाश्त तेज होती है। वो रात के बारे में बात करना चाहता था, पर सानवी हर बार बात को किसी और तरफ मोड़ देती थी। आर्यन बस उसे देखता रहा, सोचता हुआ कि वो किस लिए, सानवी ने जिज्ञासा से पूछा। आर्यन मुस्कुराया, याददाश्त तेज होती है उससे, सानवी ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। सही बात है, इसीलिए तो मेरी याददाश्त कमज़ोर चल रही है, मैंने तो ये कभी खाई ही नहीं, सोचती हूँ कि आप खा लेनी चाहिए। मैंने खाना नहीं खाया, मुझे भूख लगी है, आर्यन ने कहा। सानवी बोली, थोड़ा काम ही रह गया है, आप चाहें तो हम लोग बाहर चल सकते हैं, वैसे मैं आज रात का डिनर आपके घर पर बनाकर रखाई हूँ, अब वहीं जाकर खा लीजिए। आर्यन ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे कहीं बाहर रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाना और ना ही घर पर, तुम जहाँ खाना बनाओगी वहीं मैं खा लूँगा, खाना खाने के साथ तुमसे बात भी कर लूँगा, असल में मैं तो यहीं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहता था। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपने लिए भी तो कुछ बनाया होगा, वहीं मैं खा लूँगा। सानवी के भी होश उड़ने लगे थे, वो समझ गई थी कि आर्यन इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, अब वो मजाक में नहीं बल्कि पूरी तरह सीरियस हो चुका था। उसकी निगाहों में एक अजीब सी सच्चाई थी, जैसे वो इस बार बात करके ही रहेगा। सानवी के होंठों पर मुस्कान थी, पर दिल में हल्की घबराहट भी। उसे महसूस हो रहा था कि आज की बातचीत कुछ अलग होने वाली है। उधर उसी रात इंदर शहर के एक शांत रेस्टोरेंट में पहुंचा। टेबल के उस पार विक्रांत पहले से उसका इंतजार कर रहा था। विक्रांत ने खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया इंदर, तुम मेरे बुलाने पर आ गए, वरना मुझे लगा था तुम मना कर दोगे। इंदर ने कुर्सी खींचते हुए धीमे स्वर में जवाब दिया, मैं सिर्फ ये जानने आया हूँ कि तुमने मुझे बुलाया क्यों है, ऐसी क्या बात हो गई है? दोनों आमने सामने बैठ गए। कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा, फिर विक्रांत ने लंबी सांस लेकर कहा, दरअसल हम लोगों ने कभी एक दूसरे से आराम से बात ही नहीं की, आखिर हम रिश्तेदार हैं, तुम्हारी बहन मेरी पत्नी है, कम से कम अब तो हमें खुलकर मिलना चाहिए, बिना उस पुराने तनाव के। इंदर ने उसकी आंखों में देखा, या ये किसी नए मोड़ की शुरुआत है। वैसे भी सानवी चाहती थी कि आर्यन जल्दी से चला जाए, उसे लगा था कि इस बोरिंग से खाने को देखकर वो खुद ही भाग जाएगा। सानवी के घर में हमेशा कुछ ना कुछ नया और डिफरेंट खाना बनता था, पर आज उसने बस सिंपल दाल चावल बनाए थे। आर्यन ने जब प्लेट में पहला कौर लिया तो मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे हाथ में तो सचमुच जादू है। सानवी हल्के से हंसती, तुम भी अपना खाना साथ में ले आइए। दोनों साथ में खाने लगे। आर्यन खाते खाते कुछ कहने की कोशिश करता, पर सानवी ने उसे रोकते हुए कहा, खाना खाते वक्त बोलते नहीं है, खांसी आ जाएगी। आर्यन मुस्कुराकर चुप हो गया। जैसे ही खाना खत्म हुआ, सानवी ने उससे पहले बोलते हुए कहा, मुझे लगता है आपको भी सुबह जल्दी ऑफिस जाना होगा, मैं भी बहुत थक गई हूँ, आज पूरा दिन खेत में सब्जियां जमा की हैं तो मुझे बहुत नींद आ रही है। वो तो मैं जानता हूँ, आर्यन ने उसकी ओर शरारती नजर से देखते हुए कहा। सानवी ने उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराया, कल रात भी तो बहुत जल्दी सो गई थी, मेरे कंधे पर सिर रखकर। आर्यन बात शुरू करना चाहता था, सानवी झट से बोली, देखिए मुझे कुछ भी याद नहीं, वैसे खाने के बाद आप चाय या कॉफी लेंगे? हाँ मैं चाय पी लूंगा, आर्यन ने कहा। असल में उसका जाने का कोई इरादा नहीं था, वो बस सानवी से बात करता रहना चाहता था, इसीलिए तो बेचारे ने टमाटर की सॉस भरने के बहाने से इतनी देर घर में बैठकर खाना भी खा लिया था। सानवी किचन की तरफ जाती हुई अपने सिर पर हल्के से हाथ मारते हुए बोली, ये आदमी तो सच में मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं। रिया अपनी एक दोस्त के साथ उस म्यूजिकल ग्रुप का शो देखने गई थी, शो की टिकटें उसकी सहेली को उसके भाई ने दी थी, तो उसने रिया को साथ चलने के लिए बुला लिया था। उधर शिव मेहता भी अपनी किसी लड़की दोस्त के साथ उसी शो में आया हुआ था। संयोग से शिव ने आर्या राजवंश को भी शो की टिकट दी थी ताकि वो सानवी के साथ जाए, मगर बेचारा आर्यन तो उस वक्त सानवी के साथ टमाटर की सॉस बनाने में व्यस्त था और वो उसकी बातों को पूरी तरह इग्नोर कर रही थी। जैसे ही शो शुरू हुआ, थोड़ी ही देर में रिया का मूड खराब हो गया। ये कैसा शो है, कितना बेकार म्यूजिक है, उसने अपनी फ्रेंड से कहा, चलो कुछ खा पी लेते हैं। दोनों जब साइड की ओर जाने लगी तो रिया ने देखा
शिव मेहता एक लड़की का हाथ थामे मुस्कुराते हुए शो देख रहा था। रिया का दिल अचानक बैठ गया। वो चुपचाप मुड़ी और मन ही मन बोली, पता नहीं क्यों मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सोचा था आज तुम मुझे प्रपोज करोगे, पर अब तो तुम्हें कोई और मिल गई है। वो उसे नजरअंदाज करके जाने लगी। तभी शिव की नजर उस पर पड़ी। वो तुरंत उसके पीछे भागा। अरे तुम यहाँ हो, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा, शिव ने कहा और उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। उसकी दोस्त भी पास आ गई। शिव ने परिचय कराते हुए कहा, रिया ये मेरी फ्रेंड नीता है। फिर रिया की ओर मुड़कर बोला, ये रिया है मेरी बहुत अच्छी दोस्त। वो मुस्कुराते हुए बोली, हेलो आप बहुत खूबसूरत हैं। शिव ने जितना आपके बारे में बताया था आप उससे भी ज्यादा खूबसूरत निकली। शिव हल्के से मुस्कुरा उठा और रिया के चेहरे पर एक अनकहा भाव तैर गया। शिव ने उस लड़की नीता की तरफ गुस्से से देखा, क्योंकि जो बातें उसने नीता से निजी तौर पर कही थी वो अब रिया के सामने ही बेझिझक बता रही थी। शिव के चेहरे पर एक पल को घबराहट झलक गई। उसे डर था कि नीता कहीं कुछ और न बोल दे। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है आप लोग इस शो को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। फिर बिना कुछ और सुने वो बोली, मुझे प्यास लगी है, मैं कुछ पीने जा रही हूँ। उसने अपनी फ्रेंड का हाथ थामा और मुड़कर चल दी। पर रिया ने जैसे ही कदम बढ़ाए शिव भी बेचैन होकर उसके पीछे चल पड़ा। नीता और रिया की फ्रेंड वहीं रह गई और दोनों के बीच धीमी धीमी बातें होने लगी। उधर रिया और शिव धीरे धीरे भीड़ से दूर जाते हुए एक बार फिर आमने सामने आने वाले थे, जहां शब्दों से ज्यादा खामोशी बोलने वाली थी। क्या शिव मेहता रिया से अपने प्यार का इजहार कर सकेगा? क्या वो दोनों एक साथ हो जाएंगे? वहीं आर्यन राजवंश, जो सानवी के साथ अपने दिल की बात करने गया है, मगर उसे बेचारे से सानवी काम करवा रही है। अब मजदूरों की तरह काम करने के बाद भी वो आर्यन से बात करेगी? क्या उन दोनों के बीच अपने प्यार का इजहार हो सकेगा?
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं। मुझे फॉलो करना और रिव्यू देना याद रखें।